السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان، روس، چین اور ایران نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو تیز کرنے اور بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. چاروں ملکوں کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں نے پیر کو ویڈیو کانفرنس پر منعقدہ اجلاس میں افغانستان میں جامع جنگ بندی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. یہ کانفرنس روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر کابولوف کی میزبانی میں ہوئی. کانفرنس میں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی ایلچی لیو جان، پاکستان کے سفیر صفدر حیات اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی مندوب محمد ابراہیم طاہریان فرد نے نمائندگی کی. چاروں ملکوں کا یہ مشترکہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں افغانستان کے حریف سیاسی رہنماؤں، افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان شرکت اقتدار کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. روس، چین، پاکستان اور ایران نے صدر غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شرکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اس اہم پیش رفت سے بین الافغان مذاکرات جلد شروع کرنے میں مدد ملے گی. خطے کے اہم ممالک نے افغان تنازع کے تمام فریقوں بشمول طالبان پر زور دیا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بین الافغان امن مذاکرات کے جلد شروع کرنے کا ماحول بنائیں. مشترکہ بیان میں افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی کے عمل کی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک بار پھر سرگرم ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق خلیلزاد اتوار کو دوحا اور کابل کے لیے روانہ ہوئے. محکمہ خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق دوحا میں خلیلزاد طالبان کے نمائندوں سے ملاقات میں امریکہ اور طالبان معاہدے پر عمل درآمد کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابتدائی کچھ عرصے کے علاوہ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں لڑا. صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو ہدف تنقید بنایا اور اخبار کے ایک ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اخبار مجھ سے چاہتا ہے کہ میں افغانستان میں بغیر سوچے سمجھے کام نہ کروں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ کوئی اس اخبار کو یہ سمجھائے کہ ہم افغانستان میں 19 برس سے موجود ہیں اور اب وہاں فوجیوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلا سے متعلق طالبان بھی دو رائے رکھتے ہیں. ان کے بقول طالبان امریکی فورسز کا انخلا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز افغانستان میں ہی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالرز سمیٹے جائیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے دو مختلف واقعات میں 6 اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے واقعات مچھ اور کیچ میں پیش آئے. ISPR کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے پیر کی شب بلوچستان کے علاقے مچھ میں فرنٹیئر کور کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 5 اہلکار اور 1 سیویلین ڈرائیور جاں بحق ہو گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا دوسرا واقعہ کیچ کے علاقے میں پیش آیا جہاں عسکریت پسندوں اور اہلکاروں میں فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی مارے گئے. کلدم بلوچ شدت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے مچھ میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے 2 لڑکیوں کے واقعے میں پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اصل اہم ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ریجنل پولیس افسر نے اس واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی ہے جبکہ پولیس حکام نے تحقیقات اور مزید کارروائی کے لیے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا ہے. اس واقعے کی انسانی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے افراد نے مذمت کی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 36 اموات کے بعد مجموعی ہلاکتیں 939 ہو گئی ہیں. کرونا وائرس کے مزید 1841 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. مریضوں کی کل تعداد 43,966 ہو گئی ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ نے ملک بھر میں شاپنگ مالز کھولنے اور بازار ہفتے کے 7 دن کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में वाशिंगटन से खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ असद हसन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान में पूरा हफ्ता मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला। कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी या इदारों पर? बैरिस्टर मवाहिद हुसैन सैयद और एडवोकेट शाहनवाज ढिल्लों से गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना की जानिब से कोरोना के खिलाफ बनाई जाने वाली वैक्सीन के बेहतर नतायज का ऐलान। डॉक्टर सुहेल जीमा हमारे साथ होंगे। मॉडर्ना के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केटों में तेजी। डॉक्टर जफर बुखारी से इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में बजट 2020-2021 से पहले इक्तसादी टीम के गैर जानबदार मुआशी माहरीन से मशवरे। बजट और टैक्स के निज़ाम के बारे में मुमकिन नक्शे पर डॉक्टर इकरामुल हक से गुफ्तगू करेंगे। और अमरीका में सदारती इंतखाबात से पहले साबिक सदर बराक ओबामा की सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया पर तनकीद और इंतजामिया की जानिब से जवाब, इस रेफरेंस में मुदसरा मंजर की एक रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और बात करते हैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले पर कि पूरा हफ्ता मार्केटें खुली रहें, खासतौर पर ईद के सीजन में।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का एक फैसला आया है मार्केटों को खुला रखने के हवाले से और कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक। आपको मालूम है कि हुकूमत ने जब लॉकडाउन में नरमी दवा रखी, लेकिन उसके बाद जब मार्केटों में आवाम का सैलाब उमड़ आया तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि फिर ये 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि हफ्ता और इतवार को जो बंद करने का फैसला हुकूमत ने किया था उसको उन्होंने कालेअदम करार दिया है और अदालत ने कराची की तमाम मार्केट्स खोलने की भी हिदायत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का कोरोना आज खुद नोटिस केस, उसकी समाप्त हुई और अदालत ने ये कहा कि और क्या हुकूमतें हफ्ते और इतवार को थक जाती हैं, उनके ये रिमार्क्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और उनके हुक्म की रोशनी में ये उन्होंने ये भी कहा कि हम तहरीरी हुक्म भी देंगे कि हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें वो खुली रखी जाएँ। सो क्या सुप्रीम कोर्ट को आज खुद इस तरह का नोटिस लेना चाहिए था और इस फैसले की रोशनी में अगर कल पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैलता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आएगी या बाकी इदारों पे जाएगी? इस पे हम बात करते हैं। बैरिस्टर मवाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी ज्वाइन किया।
थैंक यू साहब।
अमरीका में भी बहुत नुकसान हुआ है, मार्केटें बंद रही हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, क्या इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह के मामलों में अदालत सो मोटो एक्शन लेते हुए वो अपना कोई फैसला दे?
देखिए जी, हमारा वही कॉमन लॉ सिस्टम है जो प्रिवेल करता है इंग्लैंड में भी और प्रिवेल करता है अमेरिका में भी
जी।
उसमें 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो ये बेसिकली दिस इज अ डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कि खोलना है या नहीं खोलना, गाइडेड बाय साइंटिफिक डेटा एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन बाय immunologists and those people who are studying the pandemic issue. तो ये तो मैं समझता हूँ क्लासिक केस है जुडिशियल ओवररीच का, लेकिन ये क्यों हुआ है? जब ये होता है, जब ये स्पेस नजर आती है, वैक्यूम नजर आता है, मेरा ख्याल है कि जुडिशियल ब्रांच ने देखा कि वहाँ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से कोई अथॉरिटेटिव डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, तो वो स्पेस देखिए उन्होंने एम्प्टी, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। सो बेसिकली इट इज वेदर ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है या ये स्टेप लेता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बेसिकली जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। दे कांट वॉश अवे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, क्योंकि उनकी अगर डायरेक्शन होती, उनकी लीडरशिप होती इस इशू में, तो ये मौका ना मिलता। वैसे टेक्निकली तो जुडिशियल ओवररीच है, लेकिन उसकी बेसिस ये है कि स्पेस वॉज फाउंड एंड एक्सक्यूज वॉज रीच्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन एंड लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच विच अपीयर्स clearly confused.
तो बैरिस्टर साहब, अब इस रेफरेंस में जब ये अदालत का फैसला आ गया है, जाहिर है हुकूमत पाबंद है इस फैसले को सुनने की और वो कोई ऐसा इंतजामी इकदाम नहीं कर सकते जो इस फैसले के बरक्स हों, राइट?
नॉट नेसेसरली, हुकूमत कह सकती है कि ये हमारी डिसीजन है, दैट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. कभी यूनाइटेड किंगडम के ये जब बोरिस जॉनसन ने ये लॉकडाउन का फैसला किया है, ये उनकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला तो नहीं था ना वहाँ इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में. यहाँ भी हैव यू सीन एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट? नौ जस्टिस है, उनमें से एक आदमी नहीं बोला, बोलना चाहिए भी नहीं उनको. इट्स अ वेरी इनडायरेक्ट इंडाइटमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेटअप इन पाकिस्तान.
प्रिंसिपली क्या अदालत को इस पे बात करनी चाहिए या इस तरह के फैसले लेने चाहिए?
नामुनासिब है, मैं समझता हूँ. प्रेसिडेंट आपको आपकी आपको प्रेसिडेंट जैसे ना फाउंडेशन मैंने आगे अर्ज किया है, जो फाउंडेशन अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम की और पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम की, इंग्लिश कॉमन लॉ है बेसिकली दोनों का, गाइड बाय दैट. तो वहां तो यू डोंट सी चीफ जस्टिस इंटरवीनिंग लाइक दैट. वो तो होता ना यार मैटर उनके पास जाए, कोई गवर्नमेंट लेके जाए, इनिशिएट करे कि आपका क्या है इसमें एग्जामिनेशन. अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए भी नामुनासिब है. इट इज नॉट अ जुडिशियल मैटर, दिस इज अ मैटर स्ट्रिक्टली सोली लाइज विद इन द एग्जेक्टिव डोमेन. दे हैव टू एक्सरसाइज देयर जजमेंट, इट शुड बी देयर डिसीजन.
और अब इस इन हालात में अगर पाकिस्तान के अंदर कोरोना मजीद ज्यादा रेशो से, बड़े रेशो से और तेजी से फैलता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या हुकूमत पे डाली जाएगी?
100% हुकूमत की होगी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड.
इवन अगर अदालत के हुक्म के बाद मार्केटें खुली हैं, फिर भी हुकूमत जिम्मेदार होगी.
अदालत को वो कह सकते हैं कि दिस इज नॉट योर प्रोविंस, दैट इज नॉट योर डोमेन, बट ही उनका कंप्लीटली उनका,
लेकिन वो कहेंगे इसमें तो कन्फ्रंटेशन मोड में आ जाएंगे.
कोई कन्फ्रंटेशन का इशू नहीं है, यू आर रिमेनिंग विद इन द लॉज, फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द प्रेसिडेंट. इसमें तो इशू ही नहीं, बड़ा क्लियर कट है ये तो. सी आइदर वी हैव टू डिसाइड वन थिंग, आइदर पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ कंट्री डिसाइडेड determined by the rule of law or the rule of men. Rule of men mein arbitrariness aati hai, apna ek undisciplined discretion aa jati hai, apne whims mein faisle karte hain.
Yani agar government kisi wajah se nakam hoti hai to wo adalat ke upar ye label ya blame nahi dal sakti ki adalat ke faisle.
Main adalat ke upar bilkul blame nahi karta. Aur ye jo kar rahe hain basically ya to na ye kar rahe hain, faisle kar rahe hain, steps le rahe hain, तो फिर वो करे तो वो तो कह सकते हैं कि नाजायज, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर है, कोई ना कोई तो आगे फैसला करे ना. इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ये इसका कनेक्शन खाली जुडिशरी नहीं है, इसका कनेक्शन मिलिट्री से भी आता है. जब पोलिटिकल वैक्यूम नजर आता है तो फिर मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू हो जाती है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोलिटिकल वैक्यूम. अब तुर्की में देखें, तुर्की में पोलिटिकल वैक्यूम नहीं था वहां. चार साल पहले जुलाई 1916 में, 2016 में कू अटेम्प्ट हुआ था अर्दुगान में, वहां उसकी जरा फॉलोइंग थी कि सोशल सर्विसेज दी हैं, वो हुआ कि लोग उठे हैं, लोगों ने पुश बैक किया, दैट मिलिट्री कू वाज बेसिकली ओवरटर्न.
सही सही,
वो बड़ा बहुत बड़ा बैक समता एग्जांपल है वहां, क्योंकि वहां स्पेस नहीं थी इसमें उनकी इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि उनकी जो बेसिक गवर्नेंस इश्यूज थे दे वर बीइंग हैंडल्ड टू द सेटिस्फेक्शन फॉर द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द टर्क्स. बेसिकली यहाँ जो गवर्नेंस इश्यूज हैं क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि पब्लिक लेवल में बहुत रिजेंटमेंट है, बहुत डिससेटिस्फेक्शन है और एक बहुत एक लैक ऑफ बेसिकली क्लैरिटी है अबाउट द होल सिचुएशन. तो उन्होंने कहा कि वी शुड स्टेप इन एंड टेक ओवर बेसिकली दिस इशू, व्हिच इज अ वेरी बैड साइन फॉर दिस सिटिंग
गवर्नमेंट. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुवैद हुसैन सैयद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया.
थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.
जी सामिन, आपने गुफ्तगू सुनी बैरिस्टर मुवैद हुसैन सैयद की. इस वक्त शाह नवाज ढिल्लों हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट. ढिल्लों साहब बहुत शुक्रिया आपका. क्या राय आप रखते हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का ये हुक्म है कि मार्केटें खोल दी जाएं, क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए बंद कराना चाहती है. तो रिमार्क्स ये हैं कि क्या दो तीन दिन जो है हुकूमत में ताकत मजीद नहीं रहती है या वो उस पर थक जाती हैं, क्या कहेंगे आप?
देखें जी, हम लोग चूंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बहुत हमारे पास वास्ट स्कोप नहीं है गुफ्तगू करने का, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं सारे डिसीजन से ये समझाऊं कि गवर्नमेंट और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सेम पेज पे हैं और ये अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चीफ जस्टिस साहब को इसमें As far as the law is concerned and constitution is concerned, वो जो management है या executive authorities हैं उसमें interfere जो करना है वो मैं समझता हूँ ये accede कर रही है हमारी Supreme Court इस वाले से. और इसका अल्टीमेटली फायदा गवर्नमेंट को पहुंच रहा है।
गवर्नमेंट के सेंस में कि अगर कोरोना फैलता है तो गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारा क्या कसूर है, राइट?
यस, इसमें गवर्नमेंट को ये सिक्योरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट इसको एज अम्ब्रेला ले लेगी कि जी हम लोग तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वी हैव टू फॉलो एट एवरी कॉस्ट। तो वो मेरी तो खैर अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट पहले ही चाह रही है इसको खोलना। खान साहब की जो मुझे जो इंक्लिनेशन है वो यही लग रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो खोलना चाह रहे हैं, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने और अम्ब्रेला दे दिया और अपोजिशन के पास मेरा ख्याल है अब क्रिटिसाइज करने के लिए कोई चीजें नहीं रहेंगी।
अच्छा, इस सेंस में भी आप इसका पॉलिटिकल जाविया भी देख रहे हैं कि अपोजिशन भी बात नहीं कर सकेगी। मेरी बात हो रही है मवाहिद हुसैन सैयद साहब से, तो वो ये कहते हैं कि जाहिर है वो उस लैंग्वेज में कि जो बरतानिया में, अमरीका में, पाकिस्तान में कमोबेश लॉ का जो स्पिरिट है उसी वो सेम है, और उसमें वो ये कहते हैं कि हर सूरत में जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी कल अगर फैलाव हुआ, अदालत पे नहीं जाएगी। इस सेंस में कि हुकूमत अदालत के सामने जाके कह सकती है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बात जो है वो एक्सीड कर रही है और इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि इंतजामिया पे आनी है तो आप इंतजामिया को ही काम करने दें, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो इसमें वो शेल्टर नहीं ले सकते, पनाह नहीं ले सकते, उनको हर सूरत काम करना पड़ेगा।
नहीं सर, आई एम सॉरी, इस वाले से मैं बैरिस्टर साहब से कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। देखें, ओपिनियन तो उनकी अपनी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें बिल्कुल जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड इट के ये सो मोटो एक्शन है और सो मोटो एक्शन के बाद अगर कोई डिसीजन अगर चीफ जस्टिस ये समझे कि गवर्नमेंट का आना जरूरी है तो उसको नोटिस कर सकता है और नोटिस करके उनको सुना जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि उन्होंने नोटिस करके ही सुन के ही उन्होंने फैसला किया होगा और यकीनन सुन के ही फैसला किया है, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया ही होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ वो जितने भी उनके आप ये कहें कि जो भी उनका कंसर्न होगा गवर्नमेंट का। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस हद तक आप गवर्नमेंट को अलेज नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने फ्रॉम ऑल द एंगुलैरिटीज उनको देख के उन्होंने डिसाइड किया होगा, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है।
जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज ढिल्लों, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया।
काइंडली सर, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल सर।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुहेल चीमा, न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर प्रैक्टिशनर लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉगर, राइटर और रिसर्चर। सवाल एक ही है और वो इस वक्त सिर्फ मेरे जहन में नहीं है, पूरी दुनिया में हर शख्स के जहन में है कि इस कोरोना की वबा का खात्मा कब होगा, वैक्सीन कब आएगी। जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं उसमें दर्जनों कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, कहीं पे ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, कहीं इनिशियल लेवल के ऊपर बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं थी। डॉक्टर सुहेल चीमा ने कुछ देर पहले कुछ मालूम अपडेट की हैं अपने फेसबुक ब्लॉग के ऊपर, सो उनसे मालूमात लेते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर सुहेल चीमा, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया।
थैंक यू असद,
बताइएगा क्या पेशरफ्त है। सुना है कि कोई अमरीकी कंपनी, उसके इब्तदाई नतायज बहुत पॉजिटिव आने लगे हैं वैक्सीन के रेफरेंस में।
जी हाँ, ये आज सुबह अमेरिका में बोस्टन के अंदर एक कंपनी है, उसका नाम है मॉडर्ना, और इसने आज अपनी फेज 1 ट्रायल कंप्लीट किया है जिसमें 45 पेशेंट एनरोल थे और उन 45 पेशेंट में उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया 15 पेशेंट ईच और उनको डिफरेंट डोसेज थी। 15 पेशेंट को उन्होंने 25 माइक्रोग्राम दिया, बाकी 15 पेशेंट को 100 माइक्रोग्राम दिया और लास्ट के जो 15 पेशेंट थे उनको 250 माइक्रोग्राम दिया। जो इंटरेस्टिंग थिंग और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो इनिशियल लोएस्ट डोज यानी कि 25 माइक्रोग्राम का जो पेशेंट थे, ऑल ऑफ द 15 पेशेंट हैव शोन कि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज जो डिवेलप हुई है वो उतनी ही एंटीबॉडीज डिवेलप हुई है जो एक कोरोना पेशेंट जिसको इन्फेक्शन होता है और उसके बाद वो रिकवर कर जाता है, तो उसके अंदर जो टोटल एंटीबॉडी जो आती है वो लोएस्ट डोज यानी कि 25 माइक्रोग्राम के ऊपर ही उनका इतना रिस्पॉन्स आ गया। सो दे वर ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि कोरोना इन्फेक्शन के जो पेशेंट रिकवर्ड पेशेंट जो है उनके जैसा रिस्पांस उनके अंदर लोएस्ट डोज के ऊपर आ गया है। अच्छा, इसमें भी एक अहम चीज जो है वो ये कि इन्होंने दो दो डोसेज दी थी, ये 43 डेज के बाद इनका जो रिस्पांस जो है उनको ये मिला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में वो ये कर रहे हैं कि अब कोशिश कर रहे हैं कि ट्राई देखते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग टू डोसेज लेट्स ट्राई गिव सिंगल डोज ऑफ 50 मिलीग्राम 50, अगर उसके अंदर भी इतना अच्छा रिस्पांस आता है तो देन दे माइट डू नॉट नीड टू गिव टू डोसेज टू द पेशेंट इन द फ्यूचर। लेकिन जो पेशेंट जिनको 100 मिलीग्राम दी है उसके अंदर जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा रोबस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा उनके अंदर एंटीबॉडीज आई है जिनसे कि वो बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव उस सेंस में उसको देख रहे हैं।
सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मॉडर्ना यूएस बेस्ड कंपनी है, कमोबेश आप बता रहे थे 35, फिर एक रिपोर्ट आई कि 100 से ज्यादा कंपनियां इस वक्त दुनिया में मसरूफ हैं जो उसके ऊपर काम कर रही हैं। सो क्या इस आज की खबर को हम सबसे ज्यादा हौसला अफजा समझे?
जी, टोटल जो कंपनीज हैं वो 100 हैं इसके ऊपर जो कोरोना वैक्सीन के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन वर्किंग ऑन इट। उसमें से सिर्फ 8 कंपनीज हैं जो अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर गई हैं, उसमें से एक ये मॉडर्ना है और दूसरी जो इससे जो क्लोज यानी कि जो जिसको हम कह रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड की कंपनी है जो कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी में बहुत ही मतलब फास्ट ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो इंग्लैंड में और यूएस के अंदर मॉन्टाना के अंदर हो रहे हैं। तो उनका
और,
भी
माफी चाहता हूं, और उनका ख्याल था कि मई के आखिर तक 600 से या 6000 से ज्यादा लोगों को वो डोज कर सकेंगे।
बिल्कुल, बल्कि वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक अपनी वैक्सीन मार्केट में लेके आ जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको अभी इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म के हिसाब से नहीं देख रहे क्योंकि कह रहे हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच इजी टू ब्रिंग वैक्सीन सो क्विकली, लेकिन वो बहुत ज्यादा उम्मीद है। और उन्होंने जो ट्रायल किए हैं अभी इनिशियली उन्होंने मंकीज के ऊपर ट्रायल किए, तो जो मंकीज के ऊपर जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने मंकीज को मैक्सिमम डोज जो वायरस की उन्होंने उनको दी, उसके बाद उसके अपनी एंटी जो वैक्सीन है उसको उन्होंने इंजेक्ट किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मैक्सिमम डोज से यानी कि जो ह्यूमन आपस आमतौर पे इन्फेक्ट होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा उन्होंने मंकीज को कोरोना वायरस कोविड-19 का जो वायरस था वो उन्होंने इनहेल करवाया, उसके बाद वैक्सीन इंजेक्ट की। तो उन्होंने देखा कि इतने मैक्सिमम एक्सपोजर के बाद भी जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस ये है, कोई एक पेशेंट को या कोई एक मंकी को नमूनिया नहीं हुआ और किसी की डेथ नहीं। तो ये जो है ये दोनों जो है न्यूज वैक्सीन के हवाले से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। और इस पे आज आपने देखा होगा न्यूयॉर्क की जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है उसमें डाउ जॉन्स का इंडेक्स है वो 900 पॉइंट वो बूस्ट हुआ है, और सारे जो कारोबारी हल्के या जितनी भी अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी है दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि भाई ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी न्यूज है।
बिलाशुबा बहुत अच्छी न्यूज है और मार्केट भी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी नजर उस पर भी होती है। सो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप हमें बताते हैं, हम तो एक लेमैन की हैसियत से पहले डॉक्टर्स की बात सुनते हैं, फिर डॉक्टर स्पेशली आप जैसे जो बाकी रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है वहां से आती हुई खबरें अगर आपके मुंह से हम सुने तो हम ज्यादा हमें उस पर कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस भी आता है। ये बताइएगा कि जर्मनी और चाइना वो भी मसरूफ है, आपने चाइना के रेफरेंस में लिखा है कि चाइना ये कह रहा है कि अगर हमें कामयाबी होती है तो हम इस वैक्सीन को फ्रीली दुनिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसका मतलब कि जी चाइना पैसे बनाना चाहता है, अमरीका पैसे बनाना चाहता है, ये बाकी इंटरनेशनल और यूरोपियन फार्मास्यूटिकल्स हैं जो पैसे बनाना चाह रही हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खत्म हो जाती हैं। और चाइना में इस रेफरेंस में क्या डेवलपमेंट है जो ये अनाउंस करें कि हम फ्री देंगे, तो क्या वहां पे भी कोई ऐसी पेशरफ्त हो चुकी है जहां वैक्सीन बनती हुई नजर आती है?
देखिए, सबसे पहले तो आप ये रखें कि इस पूरी वैक्सीन का जो जेनेटिक कोड था वो एक चाइनीज साइंटिस्ट ने इंटरनेट पे डाल दिया था। बेसिकली इफ दे वांटेड टू मेक मनी दे कुड हैव चार्ज एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर कि भाई हमारे को इतना पैसा दोगे तो हम इसका कोड देंगे। उन्होंने ये जिस दिन उनको इसका कोड अवेलेबल हुआ उस साइंटिस्ट ने इंटरनेट पे डाल दिया पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए कि भाई ये कोड है इसका, ये जेनेटिक मेकअप है, आप लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये है इस वैक्सीन से कितना पैसा कोई बना लेगा, 100 बिलियन 200 बिलियन 300 बिलियन 400 बिलियन, कोई ये ट्रिलियन डॉलर की वैक्सीन तो नहीं होगी ना। लेकिन ऑलरेडी अमेरिका की जो इस वक्त इकोनॉमी है, सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इस टाइम पे $8 ट्रिलियन नीचे जा चुकी है। तो तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि जी इस वैक्सीन से पैसा बनाया जाएगा, कैसे और किस तरह पैसा बनाया जाएगा, जबकि $8 trillion ऑलरेडी लॉस हो चुका है इकोनॉमी के, इस वैक्सीन से कितनी जो है इनकम जनरेट हो जाएगी, 100 billion, 200, 300, 400. अभी तक कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे कि 100 billion भी किसी फार्मास्यूटिकल ने बनाया हो. तो लेकिन ऑलरेडी जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो $8 trillion जो है उसने डैमेज सफर किया, मतलब डैमेज हुआ इसके अंदर. तो आप इससे कितने पैसे बना सकेंगे? और दूसरी बात जो अहम है, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट जी ने बोल दिया है कि ये वैक्सीन ग्लोबल वैक्सीन होगी अगर चाइना ने डेवलप कर ली, इट मीन दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज और दे आर टू गिव इट फॉर फ्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द पुअर कंट्रीज. तो ये पैसे बनाने वाली जो लॉजिक है, जो पैसे बनाने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये जो है इसको जहन से निकाल दें. दिस इज अ रियल इशू, दिस इज अ पेंडेमिक और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पेंडेमिक केम टू द वर्ल्ड. अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा लें, दूर नहीं जाए, 1918 में स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया था, 50-90 million पीपल हैव बीन किल्ड विद दैट पेंडेमिक. उससे पहले भी आपके हिस्ट्री उठा के देखें, मेडिकल हिस्ट्री, ये सदियों से पेंडेमिक आते जा रहा है और उसमें लोग जो है मरते हैं. कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होती, ये एक कुदरत का एक अमल है, नेचर का एक प्रोसेस है, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू एंड एवरीबॉडी हैज टू रियलाइज.
अब आते हैं वापस उसी मॉडर्ना की जानिब. अमेरिका की अपनी भी ये ख्वाहिश है कि वो उसका एक वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर एक रोल है ग्लोबल लीडर के तौर पे, और इवन इस चैलेंज को भी डील करने में वो इब्तदाई प्लेयर्स में से हो. सो मॉडर्ना का अगर ये वैक्सीन ये सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद मार्केट में आती है तो मैसेज के लेवल के ऊपर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा?
देखिए, अभी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. मॉडर्ना ने ऑलरेडी, आज ही मैं पढ़ रहा था कि उस कंपनी ने ऑलरेडी अपनी मास प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया. दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि बिल गेट्स ने अभी पिछले वीक 209 billionaires से अपील की है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट द मनी, नॉट फॉर जस्ट द प्रोडक्शन, सॉरी नॉट जस्ट फॉर द डेवलपिंग द वैक्सीन, फॉर द प्रोडक्शन साइड. क्योंकि जो असल चैलेंज होगा वैक्सीन की डेवलपमेंट, इसकी प्रोडक्शन का है. क्योंकि आप इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर इस टाइम पे 7.5 या 8 billion लोग हैं, उसमें से 5-6 billion लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी. अब लेट्स से के जिस तरह के आज मॉडर्ना की वैक्सीन है उसके अंदर वो कह रहे हैं हमें 2 doses के ऊपर रिजल्ट आया है, 5-6 billion लोगों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12-13 billion डोसेज ऑफ वैक्सीन की हमें जरूरत पड़ेगी. और इस टाइम पे सिर्फ अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ 300 मिलियन वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अमेरिका के अंदर है. तो जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद जो असल चैलेंज होगा इसका मास लेवल पे प्रोडक्शन की जरूरत होगी, उसमें दुनिया के सारे कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसमें सरे फहरिस्त जो होगा चाइना, इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है. जैसे अभी हमने खबर देखी है रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है उन्होंने पाकिस्तान की फिरोज सन से भी कॉन्टेक्ट किया और वो फिरोज सन जो है वो इस दवाई की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं. क्योंकि लेकिन पाकिस्तान जैसा भी आप कह लें साइंस और टेक्नोलॉजी में बहरहाल हमारा कहीं ना कहीं नाम जरूर आता है. हमारे पास अभी भी बावजूद इसके कि इतनी सफर करने के बावजूद हमारे पास अभी भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं क्योंकि वी हैव मैन पावर और मैन पावर जो हमारे पास काफी सस्ती मैन पावर है.
आखिरी सवाल 30 सेकंड में इसको वाइंड अप कर सकते हैं. आप न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं, कितना कर्व आया है पेशेंट्स के नंबर्स को नीचे जाते हुए देखने में और ओवरऑल अमेरिका के अंदर इस वबा के फैलाव में कोई कमी बेशी इन दिनों में आपने देखी है?
जी, लेकिन नंबर्स अगर आप देखें रोजाना, अब जो कर्व को इन्होंने फ्लैट कर दिया, अब ये डिक्लाइन की तरफ जानी चीजें शुरू हो चुकी हैं. उसकी खास वजह देखें, मोर देन 60 days लॉकडाउन पीरियड है, फिर एवरीबॉडी स्टार्टेड टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे अहम बात लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए. मैं आपको एक छोटी सी और एक स्टडी बता दूं चलते चलते, अभी मैंने पढ़ी है कि हांगकांग के अंदर उन्होंने एक स्टडी की है छोटे से एनिमल्स के ऊपर और उनको मास्क पहनाया और उसके बाद आपस में उनको इंटरेक्ट करवाया तो सिर्फ 12% लोगों को जो है इन्फेक्शन हुआ उन एनिमल स्टडी के अंदर. अब अगर आप देखें इस टाइम पे हांगकांग, वियतनाम, साउथ कोरिया, चाइना, उन्होंने इस पेंडेमिक पे तकरीबन काबू पा लिया। वजह क्या है, वो मास्क वेयरिंग नेशंस है। तो ये छोटी सी चीज है, अगर आपने एक मास्क पहन लिया
तो ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा अगले एक दो साल के लिए, मास्क और ग्लव्स और
उसमें इट हैज नथिंग टू लूज। मेरी समझ में नहीं आता कि व्हाई पीपल आर सो रिलक्टेंट टू वेयर द मास्क ऑन देयर फेस। अगर एक छोटी सी चीज करने से आपकी जिंदगी आपकी जान बच रही है, फॉर गॉड्स सेक जस्ट डू इट, डोंट बी सो स्टबर्न। इसमें कोई नुकसान नहीं,
आपकी सिर्फ जान नहीं बल्कि आप दूसरों को भी बचा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेल चीमा, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं और हम आपको अक्सर सहमत देते हैं। थैंक यू सो मच।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने डॉक्टर सुहेल चीमा से जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपने सुना कि जैसे ही अमेरिका में ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन जो है कोरोना से मुतालिक वो कामयाब तजुर्बात से गुजर रही है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि जल्द वो मार्केट में आ सकती है और फिर उसको बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने का सिलसिला शुरू होगा, उसके साथ ही जो है अमेरिका की स्टॉक मार्केट उसमें तेज़ी आई है, मार्केट्स जो है वो बेहतर होने लगी है। और पिछले दिनों में वैसे भी मुख्तलिफ स्टेट्स ने जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी की है, ये देखा गया है कि फ्यूल की कंजम्पशन वो भी ऊपर गई है और एक्टिविटी वो भी बढ़ी है। इसमें बीमारी के खतरात अपनी जगह पे मौजूद हैं, इस पे वार्न कर रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन मईशत में थोड़ी सी हरकत महसूस हो रही है। एनालिसिस इसके ऊपर हम लेते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जफर बुखारी, प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं एट शिकागो यूनिवर्सिटी। सो उनसे बात करते हैं और इसी के साथ साथ आपसे हम ये भी पूछेंगे कि अमेरिका की हुकूमत एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो बिजनेसेस के लिए भी दे चुकी है, रिलीफ पैकेज शहरियों को भी दे चुकी है, एक और रिलीफ पैकेज उसके ऊपर अभी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स में इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये जो रिलीफ पैकेजेस हुकूमतें देती हैं, भले वो पाकिस्तान की हुकूमत हो भले वो अमेरिका की हुकूमत हो, सो उसके अपने ख़जाने पे हुकूमत की अपनी जो माली हैसियत है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नोट छापने पड़ते हैं, अगर नोट छापें तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या कर्ज लेना पड़ता है, और तीसरा एक एंगल और भी डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे वो है डेट सर्विसिंग का, यानी ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने तरक्की पजीर या कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्जों को रीस्केजुअल किया या डिले किया या कुछ नरमी रखी, उससे क्या फ़र्क उनको पड़ रहा है। डॉक्टर जफर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है।
बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच।
तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आ जाते हैं अमरीका की मार्केट वैक्सीन की खबरों के ऊपर वो जान पकड़ रही है, ये कैसे मार्केट का सिस्टम काम करता है?
देखिए स्टॉक मार्केट के रिस्पांस देने की मल्टीपल रीजंस हैं, इसमें एक रीजन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट का इमीडिएट रिस्पांस तो आता है कि जब वैक्सीन के बारे में हो जाता है, लेकिन इससे पहले भी एक और चीज जो कि तकरीबन दो हफ्ते पहले IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया का और उसके बाद उन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में या मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करके उन्होंने उनका आउटलुक दिया था, ग्रोथ का उन्होंने आउटलुक दिया था। तो अगर हम उनका आउटलुक देते हैं तो इसको दो तरीके होते हैं, मैक्रो लेवल पर माइक्रो लेवल पर देखने के। मैक्रो लेवल का असर ये हुआ कि मैक्रो लेवल पर उन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड जो 2019 था, 2019 में वर्ल्ड की इकोनॉमी तकरीबन ग्रो की थी 2.9%, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंबाइंड, और इसी तरीके से जो उनकी पोजीशन है कि 2020 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी एज ए होल, क्योंकि पूरी दुनिया का अगर हम GDP देखें तो 127 trillion dollars का है,
सही।
तो ये जो 127 trillion dollars की जो इकोनॉमी है इसमें -3 इसका आएगा,
सही।
इसका मतलब ये कि दुनिया के तकरीबन पूरी दुनिया -3 में चली गई, डिप हो गई,
सही।
जीरो से निकल के नीचे चली गई। लेकिन जो उन्होंने आउटलुक दिया 2021 का वर्ल्ड का, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 2021 में दुनिया की इकोनॉमी डबल हो जाएगी,
सही।
डबल का मतलब ये कि अगर 2019 में 2.9 थी तो 2021 में पूरी दुनिया में 5.8 हो जाएगा,
सही।
उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद उन्होंने फिर यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, मिडिल ईस्ट, डेवलपिंग एंड एमर्जिंग मार्केट, سب سہارا افریقہ لیٹن امریکہ، پھر انہوں نے ان تمام کنٹریز کو ڈیوائڈ کر دیا اور تقریباً ہر مارکیٹ میں جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں ہر مارکیٹ میں جو حیران کن بات تھی وہ یہی تھی کہ ہر جگہ جیسے امریکہ میں 2019 میں 2.3 تھا ان کا گروتھ ریٹ، اس سال وہ 5.9 پہ نیچے جائے گا، لیکن 2021 جو ہے وہ 2019 سے بیٹر ہوگا چونکہ 4.7 ہوگا.
صحیح. تو اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ذرا اس جانب کہ جو اسٹیمولس پیکیجز ہیں، جو ریلیف پیکیجز ہیں، اس کو ہم پوری دنیا سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، بھلے وہ پاکستان کی گورنمنٹ دے رہی ہو، بھلے وہ امریکہ کی گورنمنٹ دے رہی ہو. سو اس میں جو حکومت کے اپنے ریزروائرز ہوتے ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اگر نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں تو اس سے کہنا چاہیے کہ افراط زر پہ کیا، اس کی ریشو پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ابھی جو امریکہ میں ایک اور اسٹیمولس پیکیج جو ہے یا ریلیف پیکیج، ابھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا، بات لیکن چل رہی ہے، تو اس کی کیا کاسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے؟
اسٹیمولس پیکیجز کے آنے کے دو اس کے طریقے ہیں. اگر ہم امریکن پرسپیکٹو میں دیکھیں تو امریکہ میں زیادہ تر جو ہے ان کے ہاں جو کرنسی کی کنورژن ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے. ڈیجیٹل کا مطلب یہ کہ میں اور آپ، ایک دور وہ تھا جب ہم اپنی سیلری کیش میں لے لیا کرتے تھے.
جی جی.
30 سال پہلے مجھے پتا ہے، جب میں نے 30 سال پہلے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا 30 ایئرز اگو، تو میرے پاس آپشن ہوتا تھا کہ میں اپنا 15 اور 30 کی شام کو 5 بجے سے پہلے میں کیشرز آفس میں جاؤں اور ان سے کہوں جی مجھے چیک نہیں، مجھے آپ کیش دے دیں، یا پھر ہمیں چیک آ جایا کرتا تھا میل کے اندر. اس کے بعد پھر آپ نے نوٹ کیا کہ پچھلے 20 سال میں ایک دم سے وہ آٹومیٹک ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا بینک کے اندر. تو وہ جو منی کی ایکچوئل ٹرانزیکشن تھی وہ ٹرانزیکشن ایک دم ختم ہو گئی، اور پھر ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈز آ گئے، پھر کریڈٹ کارڈز آ گئے، تو یہ سب یہ ڈیجیٹل ہو گیا ہر چیز. تو ڈیجیٹائز ہونے سے یہ ہوا کہ اس میں آپ اپنا جو ہے نا ڈیٹ کا جو ریشیو ہے وہ تو آپ بڑھاتے رہتے ہیں. بھائی جب امریکہ کا ڈیٹ پہلے اگر 20 ٹریلین تھا، اب انہوں نے کہا چلو 22 ٹریلین ہو گیا، اب اگر ایک اور ٹریلین دیں گے تو 23 ٹریلین ہو جائے گا.
جی جی.
تو یہ کنٹریز کے پاس ایک آپشن ہمیشہ رہا ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ انفلیشن کی پرواہ کیے بغیر وہ جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں.
صحیح.
جب ایمرجنسی نہیں ہوتی، جیسے اگلے سال ایمرجنسی نہیں ہوگی، تو یہ اس کو بھی ایڈریس کر لیں گے کہ پھر جو انفلیشنری ٹرینڈ ہے اس کی پرائسز کو ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں.
صحیح.
پاکستان میں یہی چیز ہوئی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا پرائسز جو ہیں وہ اس میں ریورس ہوئی ہے. دا اونلی ڈفرنس بٹوین پاکستان اکانومی اور امریکہ کی اکانومی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی اکانومی بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے.
صحیح.
اس اکانومی کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے. مثلا گیس اسٹیشن کا کوئی اگر اونر ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ جی وہ ایک دم سے $2 یا $1 پرائز بڑھا دے،
کیونکہ
بیلنسز بہت ہیں. پاکستان کے اندر ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو جو گورنمنٹ کا کوئی میکنزم نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کی بے انتہا جسے کہتے ہیں نا کرپٹ بیوروکریسی ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں مینوفیکچرڈ سے لے کے اور چھوٹے ریٹیل تک یہ لوگ ڈبل ٹرپل پروفٹس بناتے ہیں، اپنی پاکٹ فل کرتے ہیں، اور ایک کنزیومر کا جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے وہاں.
جی.
تو پاکستان کا اور امریکہ کا یہ تو ڈفرنس آ گیا. اب جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہ کرنسی چھاپ رہے ہیں اور اس کا کیا ہوگا، اس میں کرنٹ سچویشن میں جو ایک بیٹر چیز جو کہ نظر آئی ہے اس وقت خاص طور پہ،
جی جی،
وہ یہ نظر آئی ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ رک گئی ہے. مثلا جیسے پاکستان کو اس سال جو بھی آئی ایم ایف کو اپنی انسٹالمنٹ پے کرنی تھی،
جی،
وہ 2020 کے بقایا جات وہ بھی پے کریں گے اور 2021 کے بھی سیونگز ہو جائیں گی.
صحیح.
تو یہ جو سیونگز ہوگی، اور یہ سیونگز یو ایس کی بھی ہوں، کہ یو ایس کو جو اپنے ڈیٹ سروسنگ میں جو کہ ان کا 20 ٹریلین کا ڈیٹ ہے اس میں جو انہیں پے کرنا تھا وہ ان کو پے نہیں کرنا پڑے گا.
صحیح.
اس سے کیا ہوا ہے، اس سے یہ ہوا ہے بالکل ایسے جیسے ہماری آپ کی مارگیج ہوتی ہے گھر کی.
جی جی.
اور پھر آپ سے کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا 2 سال تک آپ گھر کی مارگیج نہیں دیں گے، لیکن آپ کے لون پہ فرق نہیں پڑے گا، 2 سال کے بعد سے پھر ہم آپ کا لون دوبارہ سے ری اسٹارٹ کر دیں گے اور اسی کنڈیشن سے اسٹارٹ کریں گے.
صحیح.
تو آپ کے پاس جو 2 سال کا کوشن آئے گا نا،
جی جی،
اس سے آپ اپنی بہت ساری فائنینشیل سچویشن کو بیٹر کر سکتے ہیں. اور यही वजह है कि आईएमएफ ने जब रिपोर्ट निकाली दो वीक पहले, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने तकरीबन दुनिया के हर कॉन्टिनेंट की जो प्रोजेक्शन दी है वो यही दी है कि इकोनॉमी जो है अगर पहले किसी कॉन्टिनेंट की 2% थी तो 2021 में वो 4% पे चली जाएगी। तो कोविड का ये एक समझे एक पॉजिटिव आउटकम है इकोनॉमी का, लेकिन इसमें अब डिपेंड यही करता है कि हाउ स्मार्टली आप अपने फंड्स को यूटिलाइज करते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर जफर बुखारी, प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस शिकागो यूनिवर्सिटी, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया।
शुक्रिया सर, थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम अलक, इंडिपेंडेंट वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और आज हमारे साथ होने का रेफरेंस ये है कि कुछ देर पहले पाकिस्तान के मुशीर खजाना डॉक्टर शेख ने और उनकी टीम ने एक घंटे तक उनके साथ कंसल्टेशन की है और ये कंसल्टेशन बजट से मुतालिक है, बजट 2020-2021 और वो भी कोरोना की आलमी वबा के दिनों में, कोविड 19 के चैलेंजेस में, और वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से मशवरा कर रही है हुकूमत क्या किया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया।
जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदाउ किया और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
डॉक्टर साहब बताइएगा, हुकूमत सलाह मशवरे कर रही है, आपने क्या एडवाइस किया है बजट 2020-21 के रेफरेंस में?
जी इसको हमने ये कहा है कि हम रवायती अंदाज में ये बजट नहीं बना पाएंगे और हमें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि दरअसल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट मालियाती खसारा है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि मालियाती खसारा तो बाहर कैफ इस दफ़ा जो है वो हमारी जीडीपी भी सुकड़ेगी और उसके लिहाज से चूँकि हमारा जो आमदनी के ज़राए हैं उसमें भी बेशुमार कमी होगी, क्योंकि जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो ये आपके IRS के बराबर है उसके अंदर कोई 1,000 अरब रुपये की कमी का जो टारगेट से इस वक्त सामना है। तो ये साल तो गो के हम बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करेंगे, मगर अगले साल में हमें इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है और हमने ले ऑफ्स कैसे रोकने हैं, उसके लिए क्या टैक्स इंसेंटिव हो, टैक्स का क्या नया निज़ाम हो, कौन से जो ऐसे हमने अभी तक जो रिफॉर्म्स करने थे वो हम नहीं कर पाए, तो इस्लाहात की ज़रूरत जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि ख़ास तौर पे दो चीज़ों का जिक्र हुआ कि अदाद व शुमार जो हैं मुख्तलिफ हमारे पास उससे हम क्या मदद हासिल कर सकते हैं एनालिसिस करने में, और उसके अलावा हम अपनी इनोवेटिव और कोई आउट ऑफ बॉक्स क्या थिंकिंग करें कि हमारे रेवेन्यू भी ज़्यादा श्रिंक ना हो और हम लोगों की मदद भी कर सकें कि उनके बिजनेस दोबारा चल पाए।
तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या हो सकती है एक बात, और दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या इससे पहले भी गवर्नमेंट्स बजट से पहले इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के साथ कंसल्ट किया करती हैं या जो उनकी टीम होती है वही बजट तैयार कर लेती है?
जी पिछले सालों में पिछली हुकूमतों में कोई खास थिंक टैंक्स को उसमें अपना इन्वॉल्व करना या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको लेने का कोई खास रवाज नहीं था, और बहुत ज़्यादा आपने देखा कि जो हम कर्ज़ों की दलदल में फंसे तो उसकी एक वजह ये भी थी कि बजाय इसके इस्लाहात की जाती और हमारी बरामदात को बढ़ाया जाता, हमने ज़्यादातर अपनी जो थी दरामदात पे इन्हसार किया, उससे लगता तो ये था कि मुल्क तरक्की कर रहा है मगर पता चला कि वो जो दरामदात थी वो उसको फंड करने के लिए तो हमारे पास सवाए कर्ज़ों के कोई पैसा नहीं था और बरामदात में शदीद कमी हुई। तो आपने देखा कि जब ये हुकूमत आई तो इसको कमोबेश अब पिछले 2-3 माह पहले तक जब कोरोना का मसला नहीं भी था तो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, मगर किसी तरीके से वो अच्छी तरह मैनेज हो गया और हमारी जो थी बरामदात जो है वो तो अगरचे इतनी नहीं बढ़ी मगर हमने दरामदात को बहुत हद तक काबू किया। अब हमारा जो है टारगेट वो ये है कि हम किस तरह से अनटैप्ड एरियाज जो हैं वहाँ से अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके और अखराजात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को मराद दे सकें और अपने टैक्स रेट्स कम करें, ताकि मईशत जो है वो आगे की तरफ चले, और सबसे बड़ा ये कि जो ह्यूमन लेवल के ऊपर जो ट्रेजेडी है, क्योंकि ये एक बहुत गरीब मुल्क है, तो हमें ये खदशा है कि आने वाले दिनों में हमारे गुरबत के अंदर कोई 20 मिलियन लोग और ना ऐड हो जाएं, तो कैसे उसको हमने बचाना है, उसके लिए पैसा कैसे जनरेट करना है, ये बड़े चैलेंजेस हैं।
तो डॉक्टर साहब, क्या अप्रोच आपको नजर आई जब आप फाइनेंस एडवाइजर से और उनकी टीम से बात की, क्योंकि पिछले साल तो हमें ऑस्टेरिटी किफायत शियारी की कैंपेन नजर आई है। अब जब पूरी दुनिया में क्राइसिस है कोरोना कोविड-19 के बाद, तो स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, तो आपको ये नजर आता है अभी भी ऑस्टेरिटी कैंपेन होगी या इंजेक्ट करेंगे पैसा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर?
जी, मेरा ख्याल है कि आपकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और मैं बहुत इत्मीनान का इजहार कर सकता हूँ कि हमारे वजीर जो इस वक्त खजाना हैं, उनकी जो बागदौड़ डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब के पास है, और वो बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये बात बताई है हमारे जो अपेक्स रेवेन्यू अथॉरिटी है कि देखिए आपको जो नए अंदाज में सोचना होगा, और अगर जहाँ भी आइडियाज़ की कमी है, डेटा की कमी है, और आपको जो है इनोवेशन चाहिए, तो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स मौजूद हैं, थिंक टैंक मौजूद हैं, और आप इसको आपने ये सोचना है कि हमने बोझ डाले बगैर कैसे मईशत के अंदर तेज़ी लानी है, और उसके लिए मिसाल के तौर पर जैसे हम आईटी सर्विसेज में बहुत पीछे हैं, उसकी बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए, टेक्सटाइल्स के मोड से निकल कर जो रवायती तौर पर हमारा 67% लाता है, हमें डिवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रा जो है जाना पड़ेगा, ज़रात के अंदर हमें नई इनोवेशंस लाकर वहाँ हमें एक्सपोर्ट सरप्लस के अलावा अपनी जो डिमांड है मुकामी उसको पूरा करना होगा। तो बहुत से नए आइडियाज़ जो थे वो डिस्कस हुए। रिटेल सेक्टर टैक्स से बिल्कुल बाहर है, बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको कैसे लो रेट के ऊपर लाकर, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। हमारे यहाँ कोई $105 बिलियन से ज़्यादा की रिटेल सेल्स होती हैं, मगर टैक्स में कंट्रीब्यूशन उनकी 1% भी नहीं है। तो उनके लिए एक हम ऐसा पैकेज ला रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे के सारा रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में आ जाए, और अगरचे शुरू में हम उसका सेल टैक्स और इनकम टैक्स का रेट बहुत ही कम शरह पर रखें।
सही डॉक्टर रामलाल साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है जब बजट आता है दो चीजें बहुत काबिल तवज्जो होती हैं, फोकस होता है हर एक का। एक तो ये कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए क्या बेनिफिट्स ज़ेहनों में हैं इंतजामिया के, आपके जैसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स क्या तजवीज़ करते हैं, पहले इस रेफरेंस में बताइएगा। दूसरा फिर डिफेंस का है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, इन दोनों एतबार से आप क्या रीड कर पाए और क्या सजेस्ट किया आपने?
जी, इसके बारे में ये था कि जो ऐसे तबकात हैं जिनकी आमदनी के ज़राए जो हैं या तो फिक्स हैं या वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं, उनके लिए तो टैक्स के अंदर भारी छूट देने का जो है वो बिल्कुल असूली तौर के ऊपर फैसला है। और उसके अलावा उनके लिए जो आसान रोज़गार का प्रोग्राम जो है एहसास के तहत वो शुरू किया जाएगा, और जो हमारी यूथ तकरीबन 2 मिलियन के करीब उनको हर साल जो है वो नौकरियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए आईटी सेक्टर हुआ और बहुत से सेक्टर्स जो हैं, और वो सेल्फ उनको स्किल्स प्रोवाइड करके और फाइनेंस प्रोवाइड करके, तो एक तो ये बहुत अहम होगा ताकि वो अपने ख़ानदान के लिए अर्निंग हैंड बन सकें। और जो बिजनेसेस इस वक्त चल रहे हैं उनके अंदर ले ऑफ्स ना हों, तो उनको तकरीबन 3 महीने का बहुत कम रेट के ऊपर जो है वो रीफाइनेंस होगा, और इसके अलावा ज़रात के लिए भी और हाउसिंग के लिए भी कम शरह के ऊपर जो बहुत बड़ी रकम जो है वो हमारा रिजर्व बैंक जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं वो रखेगा। और उसके अलावा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो हैं जिन्हें हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं अपनी इकोनॉमिक टर्म में, उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक कट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा आप जो पहलू है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का है कि जो हमारी बहुत से अनटैप्ड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं वहाँ हम उन गवर्नमेंट लैंड्स को अगर हम उनको लीज आउट करते हैं और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ओपन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारा रेवेन्यू आएगा जो नॉन टैक्स
होगा। बजट कट्स होंगे या मिलिट्री के बजट में 20% जैसे रिपोर्ट हो रहा है इजाफा मुतवक्के, चूंकि साथ इंडिया के डिफेंस बजट में भी इजाफा हुआ है, सो उस बैकड्रॉप में क्या कुछ प्लान हो रहा है?
पिछले साल तो हमने फ्रीज कर दिया था, डिफेंस वालों ने खुद कहा कि आप हमारे बजट में इजाफा ना कीजिए, क्योंकि आगे ही जो टैक्स टू हमारी जीडीपी रेशियो थी एक तो वो कम हुई थी और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि फिस्कल डेफिसिट 9% को क्रॉस कर गया था। और अब भी ये कोशिश है कि नॉन रेवेन्यू जो हमारे इस वक्त महसूलात हैं उनको ज़रा बढ़ाते हुए हम अपने बजट डेफिसिट को कोविड-19 के आखिरी 3-4 महीनों की वबा के बावजूद भी विद इन 9-10 लिमिट्स रख सकें। और आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि बजट डिफेंस में हम कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी एलोकेशन करें, कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 8-10% से ज़्यादा की शायद इंक्रीज ना हो।
आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपका मैं आर्टिकल देख रहा था कि टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान TPAP, ये एक नया प्रेशर ग्रुप बनता हुआ नजर आता है छोटे बड़े ताजरों का, ये क्या चाहता है और हुकूमत उनको कितना सुन रही है?
जी वो ये चाह रहे हैं कि आप जो बहुत आपने बहुत ऊंची शरह के टैक्स लगा रखे हैं, जैसे पाकिस्तान में 17% जो है वो सेल टैक्स है, इसके अलावा अमीर तबकात के ऊपर टैक्सेस कम हैं और गरीब और मतलब जो हमारा दरमियाना तबका है उस पर बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपेन का मकसद ये है कि टैक्स के सिस्टम को फेयर किया जाए, इसके अंदर जो प्रो रिच आप इसका बायस है उसको ख़त्म किया जाए और इसको आप या उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है उसको पब्लिक और सोशल सर्विसेज की डिलीवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो इसके एक इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक इंडिपेंडेंट है प्राइम इंस्टीट्यूट के नाम से इस्लामाबाद में, वो इसका प्लेटफॉर्म होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, मगर ये एक ब्रॉड बेस ऑल पाकिस्तान अलायंस होगा जो सोशल सिक्योरिटी और ऐसे अखराजात जो नहीं होते पाकिस्तान में जो कि हमने इस वबा से हमने सीखा है उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की कोशिश की जाएगी।
फेयरली यस सर नो में, तो ये मुनासिब सजेशन है ये इस प्रेशर ग्रुप की?
जी बिल्कुल, बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि अगर हम शराय टैक्स कम करके उसको ब्रॉड बेस करें तो उसमें रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और मईशत भी आगे बढ़ेगी, और अगर अखराजात पे कंट्रोल कर लिया जाए और वो भी मुनासिब कर दिए सोशल डिलीवरी की जो हमारी पुअर परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए तो उससे माशरे के अंदर भी एक बहुत अच्छी सूरत हाल पैदा होने के अमकान हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम मलिक साहब, आपने भी ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इस साल अमेरिका में नवंबर का महीना सदारती इंतखाबात का महीना है और हर 4 बरस बाद होने वाले ये इंतखाबात अमरीकियों के लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं, मगर इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा की वजह से इंतखाबी रैलियां मुनाकिद नहीं हो पाई हैं और इंतखाबी सरगर्मियों पर एक सुकूत सा छाया है, मगर इस सुकूत में हफ्ते के रोज़ एक ज़बरदस्त इर्तआश उस वक्त पैदा हुआ जब साबिक सदर बराक ओबामा ने स्कूलों और कॉलेजों से कामयाब होने वाले हज़ारों तलबा से वर्चुअल खिताब किया और न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की बल्कि उन्हें बावर करवाया कि कैसे मुल्क की मौजूदा क़्यादत एक आलमी वबा से बखूबी निपटने में नाकाम रही है। बराक ओबामा ने HBCU या हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के सन 2020 में कामयाब होने वाले तलबा से खिताब में उन्हें ये भी एहसास दिलाया कि मुस्तकबिल की क़्यादत उनके हाथों में हो सकती है अगर वो दरपेश चैलेंजेस से खौफजदा न हों। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा से मौसर तौर पर निमटने में नाकामी पर ट्रंप इंतजामिया पर शदीद नुक्ताचीनी की है, जिसके जवाब में अमरीकी महकमे सेहत के हुकाम ने उनका इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि 2 माह के अंदर कोरोना की वबा पर काबू पा लिया गया, अगर ऐसा न किया जाता तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। सदर ट्रंप ने सदर ओबामा की तनकीद के जवाब में उन्हें एक नाअहल सदर करार दिया है। مگر اس سب کے باوجود ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے حامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اوباما کے اس خطاب کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عرفان ملک امریکی ریاست میری لینڈ کی ہارورڈ کاؤنٹی میں مسلم کاؤنسل کے صدر رہ چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوباما نے جن طلبا سے خطاب کیا ان میں ایک تو وہ ہیں جو اسکول سے گریجویٹ ہوتے ہوئے 18 برس کے ہو جائیں گے اور پہلی دفعہ ووٹ دیں گے، اور دوسرے وہ جو کالج سے گریجویٹ ہو کر ملازمتیں تلاش کریں گے۔ چنانچہ دونوں کے لیے مستقبل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
امپلائمنٹ سچویشن جو کرنٹلی ہے یا جو آج سے 2 ماہ بعد ہوگی جب یہ اسٹوڈینٹس ورک فورس میں آ جائیں گے تو وہ بڑی ویک ہے، تو ان کو بڑی ہرڈلز پیش آئیں گی اپنے امپلائمنٹ میں۔ تو اس چیز کو پک کرنا اور اسٹوڈینٹس کو کہنا کہ بھائی تمہارے لیے یہ سوشل انیکوالٹیز ہوں گی، تم لوگ اٹھو اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ۔
ایم جی خان امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک ممتاز ریپبلکن اور سٹی کاؤنسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کسی مخالف کا کوئی اقدام اثر رکھتا دکھائی دے تو سیاسی سطح پر فکر تو پیدا ہوتی ہے۔
دیکھیں جب بھی آپ کے اپوننٹ کی کیمپین میں کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے اور خصوصی طور پہ ایسی چیز جس سے ووٹر بہت زیادہ تعداد میں نکل کر آئے تو ظاہر ہے فکر کی بات تو ہے ریپبلکن کے لیے، اور کیونکہ کلنٹن کے الیکشن میں اکثر جگہوں پہ یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ کلنٹن نے پوری طرح صدر اوباما کی مدد حاصل نہیں کی اور صدر اوباما نے اس طرح سے کیمپین نہیں کی کر سکتے جتنی کیمپین، مگر میں سمجھتا ہوں بائیڈن صاحب کے لیے، بائیڈن صاحب بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کریں گے اور وہ بھی بائیڈن صاحب کے لیے کوشش کریں گے تو بہت زیادہ کیمپین میں ان کا اہم کردار ہوگا۔
وہ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے حامی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے سوا کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ صدر اوباما کے خطاب میں مخاطب وہ کمیونٹی تھی جو اکثر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے۔ امریکہ کی سیاہ‌فام آبادی نسبتاً مسائل اور امتیازی سلوک کا شکار نظر آتی ہے، مگر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ان کی حمایت واضح ہے۔ تاہم ایم جے خان کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ افریقی امریکیوں کا ووٹ ان کے لیے پکا ہے اور ریپبلکن پارٹی ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔
بلیک امریکن ووٹر جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اتنے زیادہ نتی ہو چکے ہیں کہ اب ڈیموکریٹک پارٹی ان کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے اور ریپبلکن پارٹی جو ہے ان کو رائٹ آف کر رہی ہے، اور یہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے ایک بہتر مقام نہیں ہے، خاص کر مائنورٹی کمیونٹی کے لیے۔ اور یہی میرا میسج اپنے پاکستانی امریکن اور مسلم امریکن کے لیے بھی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ ایک پارٹی کے ساتھ اتنے نتی ہو جائیں کہ دوسری پارٹی آپ کو رائٹ آف کر دے، اور آہستہ آہستہ جس پارٹی کے ساتھ اتنے نتی ہو جائیں گے وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں۔
عرفان ملک کا بھی کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے لیے اوباما کی حمایت اہم ہے کیونکہ وہ افریقی امریکیوں کے ووٹ حاصل کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔
بائیڈن کو جو کریٹیکل میس ہے ایک افریقن امریکن ووٹ کا، وہ انہیں مطلب ہی نیڈز ٹو گیٹ 100% آف یا 90% میکسیمم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ گروپ ان کو ووٹ دے، اس میں اوباما کین بی ویری ہیلپ۔
کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے صدر ٹرمپ کے اقدامات پر تنقید ہوئی تو انہوں نے جھٹ اس کا الزام گزشتہ حکومت کو دیا جس نے ان کے بقول ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے کچھ نہیں کیا، اور ان کے الفاظ میں شیلف خالی ملے۔ عرفان ملک کہتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 ماہ کی بات ہو تو گزشتہ حکومت کو الزام دیا جا سکتا ہے، مگر صدر ٹرمپ 3 سال سے زیادہ عرصے سے حکمران ہیں، پھر وہ اوباما حکومت کو کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ ایم جی خان کہتے ہیں کہ قصور کسی ایک حکومت کا نہیں ہے بلکہ ان کے خیال میں امریکہ میں گزشتہ 50 برس کی حکومتوں نے ایسی کسی ہنگامی حالت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، اور ان کے خیال میں امریکہ کے زیریں ڈھانچے پر بھی توجہ نہیں رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن میں ووٹ کی اہمیت امریکی عوام کو سمجھنا ہوگی۔ ہفتے کے روز تقریروں سے پہلے اوباما تقریباً خاموش تھے اور صدر ٹرمپ کی نکتہ چینی کا بھی جواب نہیں دے رہے تھے، مگر اب جبکہ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ٹھہرائے جانے والے ہیں، اوباما نے ایک مرتبہ پھر سیاسی افق پر نمودار ہو کر ایک سکوت توڑنے کی کوشش کی ہے، اور ہفتے کے روز ان کی 2 تقریروں کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اب بھی اوباما کو ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور ٹویٹر پر انہوں نے ایک لفظ لکھا اوباما گیٹ، اور جواب میں اوباما نے بھی ایک ہی لفظ لکھا ووٹ۔ کرونا وائرس کی وبا میں انتخابات کی بات اگرچہ بہت دور کی بات لگتی ہے، مگر اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وائرس امریکی عوام کو ووٹ ڈالنے کی مہلت دے گا یا نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔